शहर की ओर, जब चले शहर की ओर।
नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जोशी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है जब चले शहर की ओर। अरे नरेन, आज तुम इतने खामोश, इतने चुपचाप क्यों हो?
कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है? बिना कुछ बताए, बिना कुछ जाने किसी को नौकरी से धक्के मारकर निकाल देना कहाँ की शराफत है?
नरेन, क्या हो गया और किसको नौकरी से निकाल दिया गया?
मेरे दोस्त संजय को। अंजलि, अभी 3 महीने पहले ही उसने नौकरी ज्वाइन की थी और अचानक कल उसके मालिक ने उसे बिना किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया। और जब संजय ने इसकी वजह पूछी तो उसका मालिक मारपीट पर उतारू हो गया।
तो क्या तुम्हारे दोस्त ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की?
ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उसे इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था।
तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी नरेन, तुम्हें तो मालूम है ना, तुम्हें उसे बताना चाहिए था।
हाँ, लेकिन मैंने सोचा सिर्फ संजय को क्यों, मुझे हर किसी को इस बारे में बताना चाहिए कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो तो वो क्या कर सकते हैं। और इसलिए वो सारी जानकारियाँ मैंने आज के कार्यक्रम में शामिल की हैं और संजय को भी बता दिया है कि वो आज का कार्यक्रम ध्यान से सुने।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे प्रवासी दोस्तों, आप सब भी इस कार्यक्रम को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी की संजय के लिए। चलो अब कार्यक्रम शुरू करते हैं नरेन।
तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम की 25वीं कड़ी, जो कि फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियोसिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।
और दोस्तों, हमारा मकसद है इस कार्यक्रम के जरिए प्रवास से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियां आप तक पहुंचाना। और अगर आप हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारियों के अलावा भी प्रवास के संबंध में कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782।
तो दोस्तों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, चंदर कल्पना से बाहर साथ घूमने के लिए कहता है, लेकिन कल्पना मना कर देती है। गांव में मीरा की बात मानकर मधु नीलम दीदी के पास काम के लिए जाती है, लेकिन नीलम दीदी बताती है कि उसे काम शुरू करने से पहले इसके लिए प्रशिक्षण लेना होगा। मधु को डर लगता है कि माँ जी इसकी इजाज़त नहीं देंगी, लेकिन मीरा की मदद से मधु माँ जी को इसके लिए मना लेती है। अब आगे।
आँखों में तेरी अजब सी अजब सी।
क्या है रे, हाँ? क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ?
जी कुछ नहीं, वो मेरी दोस्त है, वो अंदर एग्जाम दे रही है।
तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो,
हाँ? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ।
देखो इधर वेट करने अलाउड नहीं है, चलो चलो यहाँ से चलो।
जी लीजिए, एग्जाम भी खत्म हो गया, अब तो खड़ा रह सकता हूँ ना यहाँ।
हाँ ठीक है, लेकिन आवाज नहीं मांगता यहाँ पर, समझे?
जी
राजेश, सुनो ना।
अब राजेश ही करती रहोगी या बताओगी भी, एग्जाम कैसा हुआ?
बहुत अच्छा हुआ, मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए।
अरे वाह, और ये तो तुम्हारा आखिरी एग्जाम था ना?
वाह, एग्जाम मैं दे रही हूँ और डेट शीट जनाब को मालूम है।
हाँ भाई, अब जो लोग दिल के करीब होते हैं उनकी खबर तो रखनी पड़ती है ना।
क्या 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 कहा अभी तुमने?
कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि चलो आज तुम्हारे एग्जाम खत्म होने की खुशी में मूवी देखने चलते हैं।
लेकिन टिकट?
एक मिनट,
इसका मतलब तुम टिकट लेकर आए थे?
जी हाँ।
तो अब चले?
हाँ चलो।
अरे बौजी, कहाँ से आ रही हो, इन टोकरियों में क्या है?
बताती हूँ, पहले जरा इन्हें उतरवाने में हाथ तो लगवा।
जी लाइए।
संभल कर।
अरे वाह, इतने सारे माल्टा।
हाँ।
मैं एक ले लूँ खाने के लिए?
अरे नहीं, चल वापस रख, ये खाने के लिए नहीं है।
तो इतने सारे माल्टा का आप क्या करेंगी?
इनका जूस बनेगा।
जूस?
हाँ, ताकि उसे बेचकर घर में कुछ पैसे आए।
तो जब जूस बनेगा तो वो तो आप देंगी ना?
जरूर दूंगी, रोज स्कूल जाएगी तो रोज एक गिलास जूस मिलेगा। अब इन टोकरियों को ढकने के लिए अंदर से कपड़ा लेकर आ।
जी अभी लाती हूँ।
अरे कविता, तुम्हारे हंसने के चक्कर में कॉफी ठंडी हो जाएगी।
राजेश, उस सीन के बारे में सोच सोच कर मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। एक लड़की की शादी कुत्ते के साथ।
कुत्ता नहीं, कुकुर। कविता, मुझे तुमसे एक बात करनी है।
हाँ बोलो, क्या बात है?
पहले कहो कि तुम बुरा नहीं मानोगी।
ओ राजेश, अब तुम ये मत कहना कि तुम मुझसे प्यार करते हो।
इसका मतलब तुम्हें मालूम था?
राजेश, तुम्हारा मुझसे बातें करना, घंटों मेरे साथ वक्त बिताना, बाइक खराब होने का बहाना करके मेरे साथ ट्रेन में आना, मेरा इतना ख्याल रखना, ये सब तुम्हारा मेरे लिए प्यार नहीं तो और क्या है?
तो तुम्हें सब कुछ मालूम था और अब तक मेरी खिंचाई की जा रही थी।
हाँ, कह सकते हो।
लेकिन कविता, अब मैं तुमसे बहुत सीरियस बात करने वाला हूँ। देखो कविता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
राजेश, तुम्हारे साथ शादी करके मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन...
लेकिन क्या कविता?
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी शामिल हो, और तुम तो जानते हो कि मेरे माँ बाप मेरे बारे में...
मैं जानता हूँ कविता, जानता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बारे में अपने माँ बाप से बात करनी चाहिए, कम से कम एक बार। एक बार उनसे बात करके उन्हें समझाओ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है।
लेकिन क्या वो मेरी बात मानेंगे?
जरूर मानेंगे कविता, जरूर मानेंगे। जब तुम उन्हें बताओगी कि जिस मकसद से तुमने घर छोड़ा था, तुमने वो मंजिल हासिल कर ली है।
लेकिन
देखो कविता, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार तो गांव जाकर अपने माँ बाप से बात करनी ही चाहिए।
शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे एक बार अपने माता पिता से बात करनी ही पड़ेगी।
अरे गज्जू।
हाँ बल्लू।
अरे तुझे मालूम है, अब चंदर बहुत बढ़िया खाना बनाने लगा है। हाँ
वो तो है।
अरे क्या बलराम भैया, आप भी, सब कुछ आप ही ने तो सिखाया है।
अरे गजेंद्र, मैं तो इससे कह रहा हूँ कि भैया अपने हाथों का बना हुआ खाना अपनी बीवी को कभी मत खिलाना।
वो क्यों बलराम?
अरे अगर इसकी बीवी ने इसके हाथ का खाना चख लिया तो जिंदगी भर इसी से खाना बनवाएगी।
क्या बलराम भैया, आप भी मेरी खिंचाई करते रहते हो।
अरे गजेंद्र।
जी मालिक।
अरे मेरा खाना लगवा।
अभी लगा देता हूँ मालिक।
क्या मुसीबत है यार, जो बुड्ढा बैठने भी नहीं देता है।
गजेंद्र। हाँ? ला खाना, मैं लगवा देता हूँ।
अच्छा ठीक है भैया, लगा।
ये पालक पनीर, ये दाल मखनी हो गई, ये पराठा।
अरे चंदर चंदर भैया, जरा संभल के, एक साथ इतने सारे बर्तन मत ले जा, गिर जाएंगे।
हाँ हाँ मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो।
नालायक, सारा खाना मेरे ऊपर गिरा दिया। कथा कहीं का, सारे कपड़े खराब कर दिए।
गलती हो गई मालिक, गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देता हूँ।
गलती हो गई, अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा?
मालिक हम साफ कर तो रहे हैं, आप हमारे पिताजी के बारे में ऐसा मत कहिए।
साले जबान लड़ाता है मुझसे। ये ले, ओ, ये ले।
तूने मेरे हाथ कैसे उठाया? मेरे पे हाथ उठाता है? तेरी तो, मैं बताता हूँ तुझे।
अरे तू, मैं, अरे गिरफ्तार पर हाथ लगाता है।
तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं।
साले दो कौड़ी।
मेरे पिताजी को गाली दी तूने।
अरे
मैं बताता हूँ।
अरे अरे चंदर छोड़ छोड़ छोड़। अरे चंदर मालिक का गिरफ्तार छोड़। अरे मालिक आप छोड़ दीजिए।
अरे तेरे को छोड़ूंगा नहीं, निकल जा यहाँ से।
हाँ हाँ मुझे भी तुम्हारे यहाँ काम नहीं करना, मेरा हिसाब कर दो, मैं अभी चला जाऊंगा।
हिसाब चाहिए तुझे? ये ले।
ये क्या, सिर्फ 100 रुपए?
और तू क्या चाहता है, ये ढाबा तेरे नाम कर दूं। इसे उठा और निकल ले।
मुझे भीख नहीं चाहिए, ये ले, जा रहा हूँ मैं। लेकिन ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
अबे जा यहाँ से, बड़ा आया राजा का बेटा बनने वाला।
अरे चंदर, अरे चंदर रुक तो।
गजेंद्र तू यहीं रुक, नहीं तो तेरा भी हिसाब कर दूंगा। 100 रुपए मेरे फेंके हैं उसने, अरे भूखा मर जाएगा भूखा।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका मालिक आपके साथ मारपीट करता है या फिर गाली गलौज करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं।
नरेन, जानकारी तो हम देने ही वाले हैं, लेकिन क्यों ना इस बारे में अपने प्रवासी दोस्तों से भी पूछ कर देखें कि अगर उनके साथ कोई ऐसा करता है तो वो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे।
तो ठीक है, चलते हैं श्रोताओं के पास।
मैं पहले पीटने का कारण जानना चाहूँगा, उसके बाद अगर मेरी गलती होगी तो मैं अपने बॉस को कुछ नहीं कहूँगा, अगर मेरी गलती नहीं होगी तो अपने बॉस को अच्छी तरह मारूँगा। और ऐसे मेरे एक फ्रेंड के साथ भी हुआ है कि उसके बॉस ने हाथ उठाया उस पर, और उसने अपनी सैलरी, मतलब किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपने मालिक को अपने ऑफिस के अंदर ही मारा और नौकरी छोड़ के आ गया।
सबसे पहले मैं अपने मालिक से पूछूंगी कि मेरी गलती क्या है। अगर मुझे लगे कि मेरी इसमें गलती है तो मैं माफ़ी मांगूंगी और उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि इसमें मेरी गलती नहीं है तो सबसे पहले मैं अपने मालिक को समझाऊंगी। अगर वो उसमें भी ना समझे तो मैं ऊपर तक कंप्लेन करूंगी, क्योंकि वो हमारे साथ अगर हमें गाली दे वो उनकी गलती है, लेकिन हमें अपना लिहाजा नहीं खोना चाहिए कि हम भी उन्हें डांटें।
अगर मेरा बॉस मुझे थप्पड़ मारे तो मैं पहला सवाल उनसे यही करूंगा कि सर आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, मेरी गलती क्या है। और किसी भी मालिक की बात करें तो किसी ने भी यह अधिकार नहीं दिया कि आप किसी वर्कर को थप्पड़ मारें, क्योंकि यह कानूनन जुल्म है। इसके लिए मालिक को हर्जाना भरना पड़ सकता है और हो सके तो जेल भी जाना पड़ सकता है।
सबसे पहले मैं अपनी गलती पूछूंगी। अगर मुझे लगा कि हाँ मेरी गलती है तो मैं चुपचाप सुन लूंगी, और अगर मेरी गलती नहीं हुई तो मैं अपने बॉस को अच्छे से सुनाऊंगी और ऐसा सुनाऊंगी ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो और कि मैंने इसे बेवजह डांटा है। रही बात मारने की, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि बड़ी से बड़ी गलती पर भी कोई बॉस अपने किसी वर्कर को मार सके।
तो दोस्तों, ये तो थे हमारे प्रवासी दोस्तों के अपने विचार, जिन्हें हमारे सामुदायिक संवाददाताओं ने हम तक पहुंचाने की कोशिश की,
और इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।
लेकिन कानूनी तौर पर लोग ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमने बात की एक ऐसे शख्स से जो खुद कानून के जानकार हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वो इस बारे में।
नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क में, और यहाँ पर हम बात करते हैं श्रीमान विपिन मैथ्यू जी से, जो यहाँ पर लिटिगेशन यानी कि वकालत और लेबर राइट्स को देखते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के क्या क्या अधिकार हैं?
अगर हम कानून के अंदर क्या क्या अधिकार आपको है देखेगा तो ज़्यादातर है आपका पगार जो मिलना चाहिए, किस समय में आपको पेमेंट देना चाहिए, वो तो महीने के पहले दिन में या 7 तारीख से पहले। दूसरा है ज़्यादातर ज़्यादा काम करने का क्षेत्र में एक्सीडेंट्स, हेल्थ जो ऑक्यूपेशनल से जो आता है वो भी कानून के अंदर देखभाल करता है। इसके अलावा हम अगर संगठित मजदूरों के लिए कानून के अंदर देखेगा, उसमें और ज़्यादा कानून बनाया हुआ है, और उसमें ऐसे होते हैं कि जो वर्कर जो काम पे लग जाते हैं उनको निकाल नहीं सकते हैं तुरंत, उनको इंक्वायरी होना पड़ेगा, लेकिन असंगठित काम पे लगने वाले को इतना प्रोटेक्शन नहीं मिल जाता है।
अगर कोई मालिक या नियोक्ता इन कानूनों का हनन करता है तो कानून में इसके लिए क्या क्या प्रावधान है?
अगर कोई मालिक कानून उल्लंघन करता है, सबसे पहले ये देखना चाहिए, कोई भी आपका प्रश्न होगा आप लिखित में आपके जगह के पास जो है लेबर कमिश्नर या असिस्टेंट लेबर कमिश्नर से संबंधित कर लीजिए, और हमेशा कंप्लेन जो आप देते समय आप फोटोकॉपी रख के आप रिसीविंग कर लीजिए, और वहाँ से असिस्टेंट लेबर कमीशन आपकी तरफ से आके मालिक से पूछताछ करेंगे।
हमारे बहुत से श्रोताओं ने हमें चिट्ठियाँ तथा संदेश SMS भेजे हैं कि उनके मालिक उनके पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं?
जैसे मैंने पहले बताया था कि आपके जो जहाँ पे दुकान है उनके पास में जो विभाग में जो असिस्टेंट लेबर कमीशन का अंतर आता है उनसे संबंध कर लीजिए, लिखित में संबंध कर लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, वो प्रश्न लिखते समय आपका नाम, आपका रहने की जगह, आप किसके साथ काम करता था, कितने समय से काम करता था और कौन सा टाइम से काम करता था, सारे लिख के फिर प्रश्न लिख लीजिए, क्या है, कितना पैसे उनके हाथ में रोका पड़ा हुआ है, और ये सब लिखने के बाद असिस्टेंट लेबर कमिश्नर आपके तरफ से वो मालिक के साथ संबंध करेंगे, और लेबर कमिश्नर का फर्ज बन जाता है आपको वो पैसा वापस देने का। इसलिए ये कानून ऐसे बनाया कि ये सरकार मालिक के खिलाफ कार्रवाई करता है।
अच्छा अंजलि, आज हम भैजी से क्या बात करने वाले हैं?
आज हम भैजी से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं नरेन, और खास तौर पर हमारी महिला श्रोता तो इसे ध्यान से सुने, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन जरूरी बातों पर जिनका ध्यान एक गर्भवती महिला को प्रसव से पहले रखना चाहिए।
तो फिर देर किस बात की, आइए बुलाते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाख पते की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार भाई, नमस्कार।
नमस्कार भैजी।
आज आप दोनों ने याद कैसे किया मुझे?
भैजी, आज हम महिलाओं को उन खास बातों के बारे में बताना चाहते हैं जो कि उन्हें प्रसव से पहले ध्यान रखनी चाहिए।
और भैजी, जानकारियाँ देने का सबसे खास अंदाज तो आपका ही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये जानकारी आपके जरिए ही लोगों तक पहुँचाई जाए।
चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो दोस्तों, कहा जाता है कि औरत का माँ बनना उसका नया जन्म होता है। आखिर इतनी सारी पीड़ाएं झेलकर ही तो वो एक और नए जीवन को दुनिया में लाती है। लेकिन अगर डिलीवरी से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो इन पीड़ाओं को कम जरूर किया जा सकता है।
जैसे भैजी?
जैसे कि जब औरत को पता चलता है कि वो गर्भवती है तो उसे तुरंत ANM यानी कि नर्स दीदी से संपर्क साधना चाहिए या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना चाहिए। गर्भधारण करने के बाद एक महिला को जरूरत है कि अगले 9 महीनों तक वो अपना और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा ख्याल रखे। उसे अगले 9 महीनों में कम से कम 3 बार 3-3 महीनों के अंतराल पर अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जांच करवाते रहना चाहिए,
ताकि अगर कोई समस्या हो तो उसका समय पर ही पता चल जाए।
बिल्कुल।
भैजी, कहा जाता है कि गर्भावस्था में औरत को 2 लोगों के लिए खाना खाना चाहिए, अपने लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए।
ये बात काफी हद तक सही है कि एक गर्भवती महिला को सामान्य से अधिक भोजन करना चाहिए। गर्भवती महिला को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कम मात्रा में दिन में 5-6 बार खाना खाए। पर हाँ, खाना पौष्टिक होना चाहिए, आयरन और कैल्शियम युक्त, जैसे दूध और पत्तेदार सब्जियों वाला भोजन।
वैसे भैजी, मैंने तो ये भी सुना है कि गर्भवती महिला के ज्यादा खाने से गर्भ में पल रहे बच्चे का आकार बड़ा हो जाता है, जिससे डिलीवरी में परेशानी आती है। ये कहाँ तक सही है?
ये बिल्कुल सही नहीं है, निराधार बात है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि महिला को गर्भावस्था के दौरान आराम जरूर करना चाहिए।
आपका मतलब है बेड रेस्ट?
नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा समय खाट पर लेटी रहे। इस समय चलना फिरना काफी अच्छा होता है और रोजमर्रा के सभी काम गर्भवती महिला को जरूर करने चाहिए। आराम करने से मेरा तात्पर्य ये है कि उन्हें भारी और अधिक परिश्रम करने वाले काम नहीं करने चाहिए।
अच्छा भैजी, इसमें डिलीवरी से पहले और भी कुछ तैयारी करने की जरूरत होती है क्या?
बिल्कुल। एक तो कोशिश ये हो कि डिलीवरी अस्पताल में हो। अगर अस्पताल घर से दूर है तो उसके लिए यातायात यानी कि किसी साधन का इंतजाम पहले ही करके रखें। और हाँ, अस्पताल में अपने बेड की बुकिंग जरूर करवा लें।
लेकिन भैजी, अगर फिर भी किसी कारणवश घर में ही डिलीवरी होती है तो क्या करें?
उसका भी तरीका है। घर में डिलीवरी करवाने के लिए एक प्रशिक्षित दाई या नर्स का होना बहुत जरूरी है।
तो उम्मीद है दोस्तों, आपने भैजी की बातें ध्यान से सुनी होंगी और आप इन पर अमल भी जरूर करेंगे।
बिल्कुल, आखिर सुरक्षित ढंग से माँ बनने का गौरव कौन नहीं चाहता।
आने वाले एपिसोड्स में हम प्रसव के बाद ध्यान में रखने वाली बातों पर चर्चा करेंगे। और भैजी, आज हमें इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो ना हम साथ माँ कल भई बरात माँ अभी जो ना हम साथ माँ वो की बोलो खाणु केणु वकीना चला रात माँ वो की बोलो खाणु केणु वकीना चला रात माँ बड़ा भैका सोर्यास माँ क्यालों की मजाक माँ बड़ा भैका सोर्यास माँ क्यालों की मजाक माँ गुरु न मान्या दगड़ियो इन बंदू ब्यो काज माँ गुरु न मान्या दगड़ियो इन बंदू ब्यो काज माँ तुम्हारी सम लोने मजाक निजा सालो दिल मसाक अब निकु देन सालो फिर होली कभी मुलाकात अब निकु देन सालो फिर होली कभी मुलाकात
टाटा भाई सलाम याद रखा हमरु नाम
बढ़ते हैं काम की बात की तरफ।
दोस्तों, काम की बात में आज हम जानकारी देने वाले हैं कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नियोक्ता यानी कि मालिक कोई भी अनैतिक आदेश देता है तो आपको उसका विरोध करने का पूरा अधिकार है।
आप बिना किसी डर के अपना असंतोष जाहिर कर सकते हैं कि आप उसके द्वारा दिए गए आदेश से सहमत नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपके साथ जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो आप उसका भी विरोध कर सकते हैं।
और अगर आपका नियोक्ता यानी कि मालिक आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है, पैसों के सिलसिले में या फिर किसी और कारण से आपके साथ धोखाधड़ी करता है, मारपीट करता है या फिर आपको बिना वजह नौकरी से निकालता है, तो आप उसके खिलाफ अपने राज्य अथवा जिले के श्रम न्यायालय में जा सकते हैं।
इसके अलावा आप राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में भी जा सकते हैं। दिल्ली में इनके नंबर्स हैं 011-23-38-4012 और 981029800।
और मुंबई में इसका नंबर है 02-22-09-2857।
और उत्तर प्रदेश में आप जिन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं वो नंबर्स हैं 05-22-23-04-510 और 23-04-511।
इसके अलावा आप अपने नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम से भी संपर्क कर सकते हैं,
जहां आप अपने मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर कार्यवाही की मांग कर सकते हैं।
दोस्तों, दिल्ली के पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं 100 और 1090।
इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कुछ और हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं, जो कि खास कर महिलाओं के लिए हैं, और इन नंबरों पर महिला पुलिस अफसरों द्वारा ही पीड़ित महिलाओं से बात की जाती है। ये नंबर्स हैं 011-23-31-7004 और 23-41-1091।
और दोस्तों, मुंबई के पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं 02-22-22-62-0111 और 22-15-1855।
अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आप वहां के पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर भी नोट कर सकते हैं। नंबर है 01368-22-22-18।
तो दोस्तों, ये तो थी काम की बात। और संजय मेरे दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि अब तुम अपने मालिक के खिलाफ कार्रवाई जरूर करोगे। दोस्तों, अगर आपके मन में इस संबंध में अभी भी कोई सवाल है या फिर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176782। और अंजलि, अब आ गया है हमारे कार्यक्रम का सबसे मजेदार सेगमेंट, यानी कि आपकी चिट्ठी।
दोस्तों, हमारे सेगमेंट आपकी चिट्ठी की हमारी आज की विजेता हैं कल्याण मुंबई की रेखा जोशी। ये लिखती हैं नरेन के, जब मैं शादी के बाद पहली बार अपने पति के साथ मुंबई शहर में आई तो ट्रेन में बैठने तक से डर लग रहा था। पति ने मुझे समझा बुझाकर ट्रेन का सफर करवाया। जब गांव से चली थी तो धूप खिली हुई थी, इसलिए सोचा था कि मुंबई का मौसम भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन इस महानगरी में पैर रखा तो इतनी बारिश थी कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता था। किसी तरह भीगते भागते घर पहुँचे। घर का ताला खोलकर देखा तो कमरा ही किचन के बराबर था। कमरे की छत में जगह जगह छेद थे जिनसे पानी टपक रहा था। लोगों से बड़े शहरों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन जब शहर का ऐसा हाल अपनी आंखों से देखा तो रोने का मन करने लगा और गांव की याद आ गई। लेकिन दिल में ठान लिया कि गांव वापस नहीं जाना है और यहीं रहकर हालात का सामना करना है। धीरे धीरे लोगों से मेल मुलाकात होने लगी। पहले तो यहाँ की भाषा तक समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में कपड़े वगैरह सिलकर पति का हाथ बटाया। अब हमारी आमदनी दोगुनी हो गई थी। धीरे धीरे हौसले बुलंद होते गए। पहले तो हम 1000 रुपए किराए वाला कमरा छोड़कर 2000 रुपए किराए वाले बड़े कमरे में रहने लगे। बाद में हमने खुद के 2 रूम और उसके बाद एक गाड़ी भी ले ली। वहीं हमारे 3 बच्चे भी हुए। उनकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य सभी जिम्मेदारियां भी पूरी तरह से निभाई। आज हमारे पास सब कुछ है और हम बहुत खुश हैं।
भाई रेखा जोशी जी, खुश तो हम भी बहुत हैं, क्योंकि आपकी इस चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग। और दोस्तों, आप भी रेखा जोशी जी की तरह ऐसा ही आकर्षक इनाम जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों को चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
और चिट्ठियाँ लिखने के लिए पता वही है हमारा, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 12100 3।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com।
और दोस्तों, अब समय आ चुका है आपके संदेशों को आपके घर वालों तक पहुंचाने का। तो का कहे तो डाकिया बाबू, सुना दई का आज के संदेश?
हाँ हाँ, काहे नहीं।
मैं दिल्ली मीठापुर से सुमंत बोल रहा हूँ। शायद मेरी आवाज़ को मेरे मम्मी जी पापा जी सुन रहे होंगे, जो बलिया के जाम गांव में रहते हैं। मम्मी जी पापा जी प्रणाम। मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से रह रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को देख नहीं सकता। फिर भी मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपको हमेशा खुश रखे। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही है। मेरे साथ अजीत और अरविंद भी रहते हैं, जिनके साथ मैं अच्छी तरह से रह रहा हूँ।
मैं दिल्ली से अजीत बोल रहा हूँ। मेरी सबसे प्रिय भाभी कोलकाता में रहती हैं। मैं उनके लिए एक संदेश दे रहा हूँ। हेलो भाभी, नमस्ते, आप कैसी हो? और घर में मम्मी पापा मंजू मुनील और हमारी प्यारी कैटी कैसी है? भाभी, कोलकाता जाने के बाद आप तो हमें भूल ही गई। आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, और हर दीपावली को जो उत्सव रहता था वो इस बार नहीं था, क्योंकि दीपावली तो लक्ष्मी माँ का वास होता है, लेकिन हमारी लक्ष्मी माँ तो कोलकाता में रहती हैं। भाभी, आप कब आओगी? हम सब आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। प्लीज आप जल्दी आ जाओ, कैटी की बहुत याद आती है। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट, और हमारी तरफ से एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर।
मैं दिल्ली जैतपुर से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। शायद मेरी आवाज़ मेरे पापा जी सुन रहे होंगे, जो गांव तकीपुर में रहते हैं। मैं पापा जी को यह संदेश दे रहा हूँ। पापा जी, मम्मी जी, मेरे भाई हुकम सिंह, राजू, मेरी बहन रेखा, कविता, सब लोग कैसे हो? मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप सब लोग खुश रहें। इस दीपावली पर मैं गाँव नहीं आ सका, इसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और शायद अब सब लोगों ने मुझे माफ़ भी कर दिया होगा।
तो दोस्तों, ये तो थे आज के संदेश।
और अब अगर आपका भी दिल कर रहा है कि आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार, रिश्तेदार या किसी दोस्त को भेजें, तो हमें तुरंत SMS कर दीजिए।
हमारा नंबर है 9197176782।
और अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप हमें उन्हें चिट्ठियों के जरिए भेज सकते हैं।
इसके अलावा एक और जरूरी बात, हमारे प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना क्लब तैयार करें और उसकी गतिविधियों के बारे में हमें जरूर बताएं।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज़ भड़ंज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ, अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभवों के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaherkior@gmail.com, यानी shaherkior@gmail.com।
और हमारा पता है, कार्यक्रम जब चले शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 12100 3।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।